ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। खास इसलिए क्योंकि आज हम आपकी बात करेंगे, यानी आपके ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स जो हमारे पास आए हैं, और जो इन दिनों हम बात कर रहे थे कि एंगर को कैसे हमने मैनेज करना है, और एंगर के असली आस्पेक्ट को लिया था, पीस की बात की थी, शांति की बात की थी, फॉरगिवनेस की बात की थी, और कार्मिक फिलॉसफी की भी बात की थी। और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए, इन सवालों का जवाब साथ तलाशने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी।
ओम शांति।
सिस्टर शिवानी, इतने सारे ईमेल्स आप ही आंसर कर रही होती हैं कितनी बार, और इतने सारे हमारे पास कॉलर्स हैं। सिस्टर शिवानी, हम ये पहला ईमेल लेते हैं, हमें मुंबई से नवीन ने भेजा है, और ये कह रहे हैं कि कई दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, और अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी स्लो सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, और हर बार मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए मैं किसी भी एक प्रोफेशन में नहीं टिक पाता। बात बात पे मुझे लगता है कि मुझे लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, और यही परेशानी शुरू हो जाती है, और मुझे खुद भी क्रोध बहुत आता है। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो मेरे पिता के साथ भी जो रिश्ता है वो बड़ा एक साइलेंट एंगर का है, क्योंकि मेरे फादर बहुत एग्रेसिव थे, और कहीं ना कहीं मेरी मदर के साथ उनका जो एक पूरा रिश्ता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत एग्रेसिव थे उनके साथ भी। एंड देन ही राइट्स कि उनके साथ मेरी बातचीत भी नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे हर बार ये एहसास होता है कि मैं जो हूँ वो अचीव नहीं कर पाऊँगा, और मैं इंस्टेंट सक्सेस चाहता हूँ।
जो इनकी आज प्रेजेंट पर्सनालिटी है, लो सेल्फ एस्टीम की एक्सेप्टेंस चाहिए, इसका कारण इनका ये डिस्टर्ब्ड थोड़ा सा चाइल्डहुड है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है वो ये कि इनका बचपन से ही रिलेशनशिप हेल्दी नहीं था। इन्हें ये फील होता है, सी पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव हमें नहीं पता, लेकिन बच्चे को सारी उम्र ये फील होता रहा कि मुझे अपने पिता से कुछ नहीं मिला,
और मुझे अपने आप को प्रूव करना है, शायद हो सकता है उनकी नजरों में एक्सेप्टेंस।
एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको पिता से एक्सेप्टेंस मिली नहीं, उनको पिता ऐसा फील करते हैं कि पिता से प्यार मिला नहीं। कहीं ना कहीं एक डीप रूटेड ये बैठ गया है कि मुझे उनको प्रूफ करके दिखाना है, तो वो आज डिफरेंट वेज में आता है कि मुझे दुनिया को प्रूफ करना है। एक्चुअली दुनिया को नहीं प्रूफ करना है, प्रूफ सिर्फ एक उनको ही करना है। और जो इतना उन्होंने वायलेंस देखा है अपने अंदर घर में, और इतना अग्रेशन देखा है, तो वो पेन, क्योंकि हर समय जब वो देखा होगा, और इतनी ज़्यादा नफ़रत जो भर गई है, तो वो उनके अंदर एंगर का रूप ले गई है। अब अगर ऊपर ऊपर से इस प्रॉब्लम को देखें, तो उसका सोल्यूशन है कि आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें आप। लेकिन अगर आप डीप रूटेड उसके प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को निकालना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन आपके और आपके फादर के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। सी इट्स एनर्जी। तो अब क्या हुआ कि मैंने बहुत साल, अगर ये युवा हैं अभी, यूथ एज में है, तो 20-25 ईयर्स व्हाटएवर, मैंने अपने अंदर पेन क्रिएट किया हुआ है, एंगर क्रिएट किया हुआ है, हेट्रिड क्रिएट की हुई है, मतलब इतनी नफरत है कि मेरी बोलचाल ही नहीं है। तो जहाँ बाहर बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो अंदर कितनी नफरत अक्यूमुलेट हुई होगी, तो वो नफरत अंदर से गायब हो जाए जस्ट बाय वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वो नहीं होगा। मुझे उस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और अगर मैं उस रिलेशनशिप पर वर्क कर लूँ, मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा,
बाकी सारी प्रॉब्लम्स।
एब्सोल्युटली, मुझे कुछ भी नहीं करना है अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए, वो भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो गुस्सा यहाँ है, फादर के साथ है, तो वहाँ अगर ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि नफरत बहुत ज़्यादा है अंदर, तो उनके लिए इवन ये एक्सेप्ट करना कि मुझे उस रिलेशनशिप को ठीक करना है, ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये फील करते हैं कि वो कारण है मेरी मदर की लाइफ को ख़राब करने का, मेरी लाइफ को ख़राब करने का। तो उस इंसान से मैं बात नहीं करूँगा, उस इंसान से मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मुझे नहीं बात करने,
और मैं भी प्यार नहीं करूँगा।
सो आई जस्टिफाई माई एंगर। सी दीज आर द डिफरेंट वेज, आई जस्टिफाई माई एंगर, आई जस्टिफाई माई पेन। अब इनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सारी जो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, इसका कारण वो दर्द है। और अब और ज़्यादा जो सीरियस बात है वो ये कि ये दर्द सिर्फ इन तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनके अंदर इतना भर गया है, तो इनके जीवन में जो और आने वाले रिलेशनशिप्स हैं, कि कल को यू गेट मैरिड, टुमारो यू हैव चिल्ड्रन, तो यू एक्सपेक्ट टू हैव गुड रिलेशनशिप्स, but there is a chance that that will not be possible. नॉर्मली इस तरह की फैमिलीज से जो बच्चे निकलते हैं वो हमेशा सारी उम्र यही सोचते हैं कि मुझे जो अपने फादर से नहीं मिला
मैं बहुत दूंगा,
मैं अपने बच्चों को बहुत दूंगा, विच इज़ अ वेरी गुड थॉट कि मैं अपनी फैमिली को, क्योंकि उन्होंने एक ब्रोकन फैमिली देखी है, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत हेल्दी बनाऊंगा. लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ हमारे चाहने से नहीं हो जाएगा या ये बाहर से करने से नहीं हो जाएगा. मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी भरी पड़ी है. इतनी नफरत भरी पड़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है, तो जब मैं नेक्स्ट परिवार से भी जुड़ता हूँ तो मेरी नफरत यहाँ नहीं रह जाती. आई कैरी इट विद मी,
वो फ्लो करेगी.
एब्सोल्युटली, क्योंकि द पर्सन इज बिटर इनसाइड. तो वो जो नफरत है वो सिर्फ, हमें लगता है कि सिर्फ फादर के लिए, तो सिर्फ फादर तक ही टारगेटेड हो गए. ऐसा होता नहीं है. मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन दिस इल्यूजन कि मुझे जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ इनसे
इनसे है, और मैंने जब इनको, और मैंने इनको किसको खत्म भी कर दिया कि मैंने बात
नहीं करना, तो इनसे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई. लेकिन हम ये नहीं समझते कि उनके लिए जो थॉट्स हैं वो क्रिएट तो यहाँ की हुई है. तो वंस माई बॉक्स हियर इज फिल्ड विद हेट्रेड, मैं जहाँ भी जाऊँगा, आई कुड हैव द मोस्ट वंडरफुल वाइफ, आई कुड हैव द मोस्ट लवली चिल्ड्रन, लेकिन मेरे बॉक्स में क्या भरा हुआ है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा. तो अपने लिए और अपने आने वाले संबंधों के लिए हमें इस संबंध को ठीक करना बहुत 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 जरूरी है. Amazing. उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है.
अमेजिंग एक्चुअली, यू नो इफ वी लुक एट इट, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, कि जो एक रिश्ता जिसको नॉर्मल देखते हैं हम, कि इसका मतलब ये तो आगे हर चीज में दिखता
है, हर चीज में जाएगा. और इसका देखो कनेक्टेड कितना हो जाएगा. मेरे अंदर बिटरनेस रहेगी तो मेरा अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, उसकी वजह से उनके अंदर बिटरनेस भरेगी, दे विल कैरी फॉरवर्ड इट, एंड देन इट जस्ट गोज इनटू अ साइकिल साइकिल साइकिल, एंड एवरीवन इज ब्लेमिंग माय पेरेंट्स. अब अगर ये समझ पाते हैं कि इनके फादर के अंदर जो भरा हुआ है उसका कारण क्या,
वो भी कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा हो.
See what happens is कि ब्लेम करना तो बहुत ईजी है कि इनकी वजह से हम लोग सब परेशान हैं, लेकिन कभी क्या हमने एम्पथाइज किया उनके साथ, कभी कंपैशन से हमने सोचा कि उनके अंदर जो भरा हुआ है वो क्यों भरा हुआ है. तो लव अपने आप आ जाएगा, यू नो, व्हेन वी अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आज अगर मैं जब अपने बच्चों के साथ उस तरह से करूँ तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन होगा, यू नो व्हाई आई एम लाइक दिस, बिकॉज माई फादर वॉज लाइक दिस. बट एम आई अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज माई फादर लाइक दिस, मे बी देर वॉज समथिंग दैट हैपेंड विद हिम. तो फगीव करना कोई ऊपर ऊपर से नहीं कि बस मैंने हाँ फगीव कर दिया. एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक कोई भी फादर उस तरह से होना नहीं चाहता कि वो गुस्सा करता रहे या यू नो घर में इतना वायुमंडल खराब रहे. लेकिन वो क्या करे, वो खुद ही दर्द से भरा हुआ है. तो उस पिता को आपको समझना होगा कि उनके अंदर जो इतना दर्द है, जो कड़वाहट के रूप में निकल रहा है, उसका कारण क्या. गो टू द रूट ऑफ हिज प्रॉब्लम, एंड देन when you understand that he is also wounded, तो एक wounded इंसान से नफरत क्या करोगे आप, आप गुस्सा क्या करोगे, आपको तो प्यार आएगा, और आपका प्यार उनके उस चोट को
heal
कर देगा. हम सब क्या समझते हैं, इनको चोट लगी हुई है, इनकी वजह से मुझे चोट लगी, अब मेरी वजह से नेक्स्ट को चोट लगेगी. हीलिंग का जिम्मेवारी
हमारी नहीं,
कोई भी नहीं उठाता. अगर ये थोड़ा सा perspective को थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं कि वो wounded है, अंदर से बहुत दुखी है या परेशान है किसी बात के लिए, लेट मी गिव लव, लेट मी गिव सो मच लव कि वो चोट पूरी तरह से अंदर ठीक हो जाए. तो अभी क्या हो रहा है, मैं नफरत दे रहा हूँ उनको, तो वो नफरत पहले मुझे मिल रही है, फिर उन तक पहुँच रही है. उनके अंदर ऑलरेडी दर्द है, अब उनको नफरत मिलती है मुझसे, मेरी मदर से, औरों से, तो उनके अंदर का दर्द बढ़ता जाता है. नाउ लेट मी मेक अ चॉइस कि फ्रॉम टुडे नफरत देने की बजाय लेट मी गिव लव. तो सबसे पहली चीज, वो प्यार मेरे थ्रू निकलेगा, तो मेरा जो बॉक्स है वो क्लीन होता जाएगा कि यहाँ नफरत की जगह प्यार, और दूसरा उनको मेरे से क्या मिलेगा.
That's so beautiful, actually.
He is going to probably think कि ये बहुत difficult है. Again, it's only one thought away.
Yes, yes, yes.
It's just one thought away. अगर आपको समझ में आ गया कि इसमें मेरा फायदा होगा क्योंकि मैं प्यार से भर जाऊंगा, उनका फायदा होगा वो हील हो जाएंगे और जो मेरे आगे आने वाले रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे. नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करें वो अच्छे नहीं बन सकते हैं, बिकॉज यू विल बी बिटर इनसाइड.
बहुत सुंदर बात ये आपने कही शिवानी की, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कोई भी और प्रोफेशन में आप जाएं उससे पहले कोशिश यही कीजिए कि इस रिश्ते को,
क्योंकि गलत फाउंडेशन पे आप अपने अगले रिश्ते नहीं बना सकते. आप सोचे ये तो यहाँ का यहाँ खत्म, अब मैं आगे के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बनाऊ. नहीं, आपका फाउंडेशन कमजोर, आप सोचे बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना लेंगे. नॉट पॉसिबल. स्टार्ट टुडे, फिनिश द बिटरनेस. हाउ? हो सकता है कि वो आपसे एक क्षण में नहीं खत्म होती है. आप सबसे पहले उनसे जो आपकी बोलचाल बंद हुई हुई है आप आज से बात करना शुरू करें.
कम्युनिकेशन, यस.
इसके लिए शायद हो सकता है कि बहुत ईगो को साइड पर रखना पड़े, और अगर हो सके तो कुछ भी नहीं है, ही इज़ माई फादर, आई कैन स्टार्ट टॉकिंग टू हिम टुडे. आज बात करना शुरू कर दे, एंड विद कंपैशन, एंड धीरे धीरे ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू नो, इवन इफ डोंट एक्सपेक्ट कि वो चेंज हो जाएंगे एकदम से, बट आई चेंज एंड स्लोली he will change. Bitterness create karna, and this will benefit the mother also. Kyunki unko, if you see the mother, to mother ko bhi kya mil raha hai? Husband se gussa mil raha hai, bete se kya mil raha hai? Beta bhi to dard mein hai. Ab generally kya hota hai, maa dard mein hai, to beta bhi dard mein saath mein baith jata hai. Usse mother ko kya mila? Donon se dard hi to mila. And overall, the environment of the house, aapka ghar aane ko dil nahin karega shaam ko. To this kind of a family. So it's my responsibility. Let me take it up. तो आज से ही बात करना शुरू कर दें, अपने आप को हील करें और प्यार देना शुरू कर दें. रिमूव ऑल दोज इमेजेस विच वर देयर. अगर वो आते भी हैं तो आप समझें इट्स ओके, ही हैड अ रीजन फॉर इट वॉट ही इज डूइंग. लेकिन मेरी जो इमोशन है वो मेरी अपनी क्रिएशन है. तो फ्रॉम टुडे नॉट पेन but love. That's my choice. I will create that. And it's very easy. Kyunki pyar to already hai.
एमर्ज करना है बस,
उसको सिर्फ देना शुरू करना.
बिल्कुल, बहुत सुंदर बात नवीन. हम पूरी उम्मीद करते हैं और आपके ईमेल का इंतज़ार करेंगे जहां आपके पिता के साथ जो आपका रिश्ता है वो एक कंप्लीशन पे आएगा, एक बिटरनेस पे ना रह के एक प्यार भरे रिश्ते में परिवर्तित हो पाएगा. एक अगला ईमेल और लेते हैं, और ये भी एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा सिचुएशन है जिससे वाबस्ता मेरे ख्याल से हमें से ज़्यादातर लोग होते हैं. वो ये कि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहती हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मेरे कलीग के साथ एक बार बहुत कहा सुनी हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और वो मेरी बहुत अच्छी मित्र थी पहले, लेकिन किसी एक बात पे बहुत फाइट, इतने ज़्यादा एंगर था और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी कर दी, जबकि हम बराबर के ही हैं, कोई वो मेरी सीनियर नहीं है. अब हमारी ऊपर ऊपर से तो बातचीत ठीक है, फिर से शुरू हो गई, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, जब भी मेरा उनसे वास्ता पड़ता है, मुझे वो हर बार याद आ जाती है, हर बार. और अब मैं उसको वो सेटल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब भी मैं उनसे दोबारा मुलाकात करती हूँ. तो मैं क्या करूँ ना, मैं उनसे बात कर सकती हूँ उस बारे में, क्योंकि वो ऊपर से तो हमारी बात सेटल हो चुकी है, लेकिन अंदर मुझे अभी भी बहुत गुस्सा चढ़ता है कि मैंने वापस नहीं लैश आउट किया. आई कुडंट गिव हर बैक व्हाट I think she deserves.
मैं उस टाइम वापस नहीं जवाब दे पाई, तो वो भी मुझे अब लग रहा है कि क्यों मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया. See, it's sometimes like कि अगर हम अपने आप को रोक भी लेते हैं रिएक्ट करने से, तो भी हमें पश्चाताप होता रहता है उस पर कि मैंने रिएक्ट नहीं किया. क्यों? अगेन बिलीफ सिस्टम. अपने आप से पूछे कि वॉजेंट इट अ गुड रिस्पॉन्स कि मैंने रिएक्ट नहीं किया. लेकिन हो सकता है मैंने बाहर से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, और अंदर का रिएक्शन अभी तक मेरे अंदर वो अक्यूमुलेटेड है. तो टेल योर सेल्फ कि जो ये आप समझ रहे हैं कि मैंने रिएक्ट नहीं किया वो गलत था, वो आप अपने आप को पहले बताइए कि वो तो सही था. वो आपकी फ्रेंड है या कोई भी और है, वो किसी ना किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि वैसे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. मोस्टली हमें ये समझना होगा कि जब किसी एक इंसिडेंट पे कोई बहुत एकदम से यू नो एक्सप्लोड हो जाता है या रिएक्ट करता है, मोस्टली वो उस एक्सप्लोजन का कारण वो इंसिडेंट होता ही नहीं है.
बिल्कुल,
99% ऑफ द टाइम वो परिस्थिति उस गुस्से का कारण है ही नहीं. लेकिन हम समझ लेते हैं इतनी सी बात पर, इस कारण पर इन्होंने इतना गुस्सा कर दिया, क्योंकि हम उनको समझने के लिए रेडी नहीं है.
हम
समझ लेते हैं मेरी इतनी सी बात पर इन्होंने इतना गुस्सा कर लिया. अब एक मिनट साइलेंस में अगर सोचें, पर्सपेक्टिव को चेंज करें, इन्होंने आज इतनी सी बात पर इतना गुस्सा कर दिया, आधे ओके, इनको कुछ बात तो नहीं अंदर जो परेशान कर रही है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका व्यक्तित्व वो नहीं है कि आप इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन करेंगे. तो अगर मैं आपके लिए सोच पाऊँ, कंपैशन अगर हो, तो आई विल से इज एवरीथिंग ओके विद यू, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप अंदर किसी और बात से परेशान हैं. तो उससे क्या होगा, अगेन आपके लिए गुस्सा नहीं, आपके लिए प्यार आएगा कि पता नहीं आपको कौन सी बात परेशान कर रही है. और जरूरी नहीं है कि ये बात हम उस टाइम कह सके उनको, क्योंकि यू नो समटाइम्स उस समय तो उस तरह का सिनारियो नहीं होता कि हम कहें कि कहीं आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इतना गुस्सा कर रहे हो. सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता, उसको खुद को भी नहीं पता, उसे भी खुद को यही लग रहा है कि मैं इसी बात पर गुस्सा हूँ. यू नो, तो इफ यू ट्राई टू टेल हिम कि नहीं एक्चुअली आप किसी और बात से गुस्सा हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारी चीज़ों के कारण, बहुत सारे परिस्थितियों के कारण, जो मैंने खुद अपने अंदर हर्ट क्रिएट किया है, वो अक्यूमुलेट हो चुका है. अगर कोई इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो, बेस्ट थिंग इज शी इज डन अ वेरी गुड थिंग बाय नॉट रिएक्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास दर्द है, आपने और क्यों देना है. तो उसके लिए पहले अपने आप को दो, फिर उनको दो. ठीक है, उनका वो बॉक्स खुल गया अंदर का और वो सारा बाहर निकल के आ रहा है, तो देन लेट इट कम आउट. उस समय मैं क्या दे सकती हूँ, यू नो वी सॉ अर्लियर ऑल्सो कि सबसे बड़ी सपोर्ट हम किसी को क्या दे सकते हैं अगर कोई दर्द में है, पीसफुल वाइब्रेशन. लेकिन उसके लिए फर्स्ट पीसफुल वाइब्रेशन किसी को दे नहीं पाते, क्योंकि हम खुद ही अंदर से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं. तो पहले समझ लें कि उनके पास कोई कारण था. दूसरा, अपने आप को समझाएं कि अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया.
इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबमिसिव हूं. She has written somewhere कि you know कि I feel that I was submissive.
No, you've done a very good thing. क्योंकि आपने उतनी बात को उतने में ही खत्म कर दिया. अगर रिएक्ट कर दिया होता तो कितनी बड़ी हो जाती. लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप रिएक्ट अभी भी कर रहे हैं. शायद उस दिन नहीं रिएक्ट किया हो, लेकिन रिएक्ट अभी कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन नॉट नेसेसरी वर्ड्स, लेकिन रिएक्शन हमारे थॉट्स हैं. तो हर बार जब आप उनके बारे में उस तरह से सोच रहे हैं, कई बार क्या होता है, मैं आपको ऊपर से नहीं बोल पाती जो मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अंदर मैं सारा दिन आपको बोल रही हूँ वो जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ. तो अंदर एक कॉन्वर्सेशन सारा दिन चल रही है, तो वो भी तो एक रिएक्शन है. आई विल कॉन्शियसली हैव टू स्टॉप दैट रिएक्शन, एंड दैट विल हैपन इफ आई स्टार्ट क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स फॉर यू, अंडरस्टैंडिंग यू, एंड देन ब्रिंग माई रिलेशनशिप आउटसाइड, जो रिलेशनशिप है उसको भी नॉर्मल पर ले आए. यू नो व्हाई नॉट, हाउ मच टाइम. एक्चुअली देखा जाए तो दोनों जने चाहते हैं कि वो वापस वैसा ही हो जाए, लेकिन दोनों रुकेंगे कि पहले कौन करेगा, कौन पहले बात करेगा, या कौन पहले सॉरी बोलेगा, या कौन पहले यू नो आकर फिर से बात करना शुरू करेगा. व्हाई नॉट मी. आज दिन तक हम समझते आए जो झुका वो कमजोर. परमात्मा हमें सिखाते जो झुका वो शक्तिशाली, क्योंकि ईगो कमजोरी है, झुकने में ताकत चाहिए. तो जो झुका वो शक्तिशाली है, और जितना बार हम झुकते जाते हैं इस तरह से, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी टॉलरेंस पावर और भी बढ़ती जाती है. अगेन एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग कैसे करें, लेकिन कैसे भूलें, कैसे बात करना शुरू करें, कैसे बात करना है, जाओ और बात करना शुरू कर दो. एक्चुअली जब एक्चुअली करते हैं तो बहुत सिंपल है, सोचते हैं तो बहुत मुश्किल. कई लोग सोचते हैं कि हम बात करें पता नहीं वो बात करेंगे कि नहीं, तो यू नो मैं झुकूँ भी सही और सामने वाला और भी ज़्यादा यू नो विदड्रॉ हो जाए, तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो
जाएगी.
लेकिन ना मैं झुकूँ और सामने वाला कहे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी. लेकिन हर आत्मा प्रेम स्वरूप है. द अदर पर्सन इज जस्ट वेटिंग. इट्स जस्ट दैट उनके अंदर पावर नहीं है झुकने की, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि कब आपके साथ वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए. सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप,
आई थिंक. और वो पहला स्टेप जो है वो जरूर एक मधुर रिश्ते की तरफ जरूर बढ़ेगा. एक और हम ईमेल ले लेते हैं. सिस्टर शिवानी, ये एक ईमेल है, एक डॉटर इन लॉ है. उन्होंने लिखा है कि नाम ना ले मेरा,
अच्छा
लेकिन ये आया है उत्तर प्रदेश से, और ये कह रही हैं कि आपका प्रोग्राम देख के मुझे लग रहा है कि गुस्सा जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, या गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूरा प्रोग्राम जो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं किसी और की मदद कर सकती हूँ जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, खासकर मेरी मदर इन लॉ को, कि ना सिर्फ मुझसे ही, मुझसे तो वो उसने गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती हैं वो, लेकिन वो जनरली गुस्सा जो है उनको हर बात पे आ जाता है। और अब आपका ये बात समझने के बाद, देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी, पूरे परिवार के लिए तो है ही नहीं, और मैं भी बहुत हर्ट होती हूँ, लेकिन क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ?
बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हमें अब सबसे पहले ये समझना होगा कि दूसरे की हेल्प करने के लिए पहले मेरी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू गिव देम पीस, आई वॉन्ट टू गिव देम लव, आई कैन नॉट गिव इट इफ आई फील दैट दे आर नॉट राइट। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मदद कोई ऐसी मदद नहीं है जो ऊपर से की जाए, यू नो, कि आप जाकर उनको शांत कर दो या बिठा दो, ये सब तो होने नहीं वाला। यहाँ सब जो मदद है वो बहुत सटल रूप में अंदर चलने वाली है। तो वो वही है कि अगर मैं सचमुच में आपको आपको हील कैसे करूँ अंदर, आपके अंदर पेन है, आपको प्यार देना है। अब आपको प्यार देने के लिए सबसे पहले मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई दर्द है, इसलिए आप इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं ये तो है ही गुस्से वाले, ये तो हर एक के साथ गुस्सा करते रहते हैं, तो मैं कौन सी वाली एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ? गुस्से वाली, क्योंकि एवरी टाइम आई टर्न ऑन एंगर, आई एम थिंकिंग अबाउट एंगर, आई एम थिंकिंग अबाउट यू एज एन एंग्री पर्सन, आई एम गिविंग यू दैट एनर्जी, यू आर एन एंग्री पर्सन। एंड जनरली ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को सबसे ये एनर्जी मिलती है कि ये गुस्से वाले हैं, ये गुस्से वाले हैं, ये गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाली एनर्जी और भी ज़्यादा उनके अंदर रीइंफोर्स हो जाती है। तो अगर मैं रियली हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे ये लेबलिंग हटानी पड़ेगी, ये थॉट्स हटाने पड़ेंगे, और समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई कारण है। लेकिन आत्मा तो कैसी है? आत्मा तो प्रेम स्वरूप है। मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, तो मुझे क्या भेजना है? तो इसमें ये नहीं कि कोई मुझे विशेष बैठ कर भेजनी होती है गुड विशेस, इट इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ यू ओवरऑल एवरी टाइम। क्योंकि जो इस तरह से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सबसे वो फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द मिला है, तो उन्हें सिर्फ कोई एक ऐसा चाहिए जो उन्हें अनकंडीशनली प्यार दे पाए। इवन जब वो गुस्सा कर रहे हैं, इवन जब वो बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, मैं हर्ट ना होकर अगर आपको प्यार दे पाऊँ, क्योंकि जैसे ही मैं हर्ट हो गई मैं प्यार नहीं दे सकती, बिकॉज आपकी वजह से मैं हर्ट हो गई, तो आई कैन नॉट गिव यू लव। तो इट रिक्वायर्स मी फर्स्ट टू बी इन अ वेरी वेरी एलिवेटेड स्टेट, कि आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, मुझे हर्ट नहीं होना। क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी, मैं साथ में पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर सकती। जिसने बहन ने लिखा है, आप खुद मेडिटेशन करें, अपने अंदर वो पावर भरें कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और वो वाइब्रेशन बार बार क्रिएट करें, और वो वाइब्रेशन हर टाइम फिर उन तक ऑटोमेटिकली पहुँचेगा। और जब भी वो आत्मा सामने आए तो उनको भी क्या देखें, ये भी एक प्रेम स्वरूप आत्मा है, बोलना नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ये थॉट क्रिएट करेंगे, वो प्रेम की वाइब्रेशंस उन तक ऑटोमेटिकली पहुंचेंगी, और वो दर्द जो अंदर भरा है वो कहीं ना कहीं मिटना शुरू हो जाएगा। बट वेरी इम्पोर्टेंट, खुद कभी अपसेट नहीं होना उनसे, या किसी बात से हर्ट नहीं होना, नहीं तो इट विल नॉट वर्क। और 2 मिनट के लिए इसको हम अभी भी करके देख सकते हैं कि आपको सारा दिन में क्या प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो एनर्जी हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसको हम मॉर्निंग में बैठकर मेडिटेशन के दौरान क्रिएट करें, और जो हमारा हर एक घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें डेफिनेटली उसी थॉट को क्रिएट करें। तो लेट्स से कि आज मैंने अपने आप के लिए थॉट लिया कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, लव इज़ माय नेचर। तो जैसे ही मुझे वो 1 या 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, पॉज, अपने चारों तरफ से जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको साइलेंट कर दें, और मन को बताएं कि ये 1 या 2 मिनट मेरे को अपने आप के लिए निकालना है, और सब चीज़ों से डिटैच होकर बहुत स्ट्रॉन्गली एक थॉट क्रिएट करें, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और अपने आप को देखें कि ब्रिकुटी के बीच एक बहुत सुंदर सा चमकता हुआ सितारा। लेट ऑल अदर थॉट्स जस्ट गो अवे, एंड उस एक थॉट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर दें। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ फैलते हैं। कुछ एक क्षणों के लिए मैं आत्मा यहाँ से निकलकर परम धाम चले जाती हूँ। देखें अपने आप को परम धाम में, उस निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास। मैं उस भगवान का बच्चा हूँ जो प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ लव, और प्रेम की किरणें उनसे निकल चारों तरफ जैसे फैलती तो मुझ में भी भरती जाती है। परमात्मा के इस प्यार को अपने अंदर भरते हुए मैं आत्मा पुनः आ जाती हूँ अपने कर्म क्षेत्र पे, और सारा दिन इसी स्मृति से अपने को भी देखूं और जो मेरे सम्मुख आए उनको भी इसी स्मृति से देखूं कि ये आत्मा भी परमात्मा का बच्चा प्रेम स्वरूप है। ओम शांति,
ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो एक मिनट का पॉज हर एक घंटे बाद है, कहीं ना कहीं दैट विल डेफिनेटली हेल्प हर, और मुझे लगता है हमेशा हमें भी अपने दिन में, जो हमने एक बार पूरी मेडिटेशन की बात की थी, उसमें एक मिनट का जो है उसका रेलिवेंस बहुत इम्पोर्टेंट है।
इट्स वेरी सिंपल, डजंट रिक्वायर टाइम, बस एक मिनट। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, यहाँ से गए शिव बाबा के पास। शिव बाबा तो है ही ओशन ऑफ लव, तो वो ऑटोमेटिकली ओशन से तो लहरें सारी मेरे ऊपर आ ही रही है, बस भर लिया वापस। हाउ मच टाइम डज इट टेक? अब इसका इफेक्ट मेरे ऊपर काफ़ी देर तक रहेगा, मुझे ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। और जो वो दो मिनट मैंने निकाले तो वाइब्रेशन क्या क्रिएट हुआ घर के अंदर। अब थोड़ी देर के बाद अगर बाहर के इन्फ्लुएंस आने से मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन फिर मेरा नेक्स्ट मिनट आ जाता है, उतनी देर में मुझे फिर याद आ जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेरा नेचुरल संस्कार बनता जाता है।
बिल्कुल, और आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
परमात्मा की हम बात करते आ रहे हैं, तो ये जो पूरा ज्ञान, ये जो पूरे एस्पेक्ट्स हमें समझ में आ रहे हैं, ये परमात्मा का ही ज्ञान है। सेंटर पर जाने की जब बात की, जब पहले भी हमने बात की थी, तो यही था कि वहाँ मुरली सुनाई जाती है, यानी परमात्मा ने जो बात कही है, परमात्मा के जो वाक्य हैं वो हमें मिलते हैं, और वो ज्ञान कहीं ना कहीं दिन भर हमारे साथ रहता है। अगली कड़ी में क्रोध से जुड़े हुए जो मुरली में वाक्य हैं, जो ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं दिन भर में और जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न कर सकती हैं, आपके लिए बहुत कारगर हो सकती हैं, उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने ईमेल्स या फ़ोन कॉल्स हमें करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप हमें सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस कड़ी में आपसे विदा लेते हैं। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति।